महाकुमार सूर्य प्रकाश भाई जी।
ओम शांति। टॉपिक बहुत कैसा है? अच्छा बनेंगे जैसे कबार सा या भारी काम है? मैं सोच रहा था अब नए पुराने सभी होंगे, 5 साल से कम ज्ञान वाले कौन कौन बैठे हैं, 10 साल से 5 साल के बीच, 10 साल के ऊपर। टॉपिक बहुत डीप है, लंबे काल की प्रैक्टिस के बाद ही ये स्थिति आती है। आप सभी गर्भस्थ में रहते हैं, रोज अनेक बातें आपके सामने आती हैं, उनमें निश्चिंत रहना क्या अनुभव है माताओं का? निश्चिंत रहना संभव है क्या? है? क्या कहती है माताएं भाई? काम संभव तो है, परंतु काम मेहनत का है, लंबे काल की प्रैक्टिस। ये बात जब से बाबा ने कही, मैं भी इस पर बहुत प्रैक्टिस करता आया हूँ। याद दिला दूं आपको, कई साल पहले से बाबा ने शुरू किया, बेफिकर बादशाह बनो और विधि बताई, मेरे को तेरे में बदलो। और दूसरी बात कही है किसी को याद? नहीं। फिकर बाप को देकर क्या ले लो, फखुर ले लो। ये दो बातें तब से बाबा रिपीट करते आए हैं और दोनों ही प्रैक्टिस बहुत गहन है। मैं अपने अनुभव भी जोड़ूंगा और साथ में ब्रह्मा बाबा के। बाबा को दो समय पर हैं? दोबारा बोल दो, आ जाएगा बीच में आ जाएगा। बाबा को दो समय पर बेफिकर बादशाह बनने की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। एक तब बेगरी बात में, जिसकी कल्पना हम सब कर भी नहीं सकते कि क्या हुआ होगा। दूसरा यज्ञ शुरुआत में, जब गालियां खानी पड़ी, जब विरोध बहुत हुआ, जब अनेक तरह से बाबा का रास्ता ही रोका गया। बाबा को तो संपूर्ण निश्चित था ही, लेकिन बेफिक्र बादशाह रहना ये दूसरी बात है। बगैरी बात में कुछ भी नहीं था, यज्ञ में कुछ भी नहीं। सोचो आप 380 लोग खाने वाले हों और बाप के पास 50 पैसे बचे हों केवल, क्या होगा उसको? सब कुछ बिक गया था यज्ञ का, पीतल तांबे के बर्तन बिक गए थे, सिलाई करने वाली मशीनें बिक गई थी, टेबल कुर्सियां बिक गई थी, छोटी मोटी घड़ियां थी दीवारों की वो बिक गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में कैसे बाबा चल डोल रहे, बोलो, चिंतन करेंगे। अच्छा मैं इस टॉपिक को सीरियस नहीं बनाना चाहता, जो कुछ आप कर सके वो बातें रखेंगे सामने, बड़ी बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें। क्या रखा बाबा ने बुद्धि में? एक बल एक भरोसे। इसमें मेरा तो एक शिव बाबा की बात नहीं, वो अलग सब्जेक्ट है। एक भगवान के भरोसे जीना, ये सब उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता है, ये उसका वायदा है, ये उसने वचन दिया हुआ है, तो वो सबको खिलाता ही रहेगा। बात केवल खाने की तो नहीं होती ना, जीवन केवल खाने से ही तो पूरा नहीं हो जाता। यहाँ आए بہت لوگ بیمار ہو گئے. ایک ساتھ 70 لوگوں کو لوز موشن تھے اور گھر میں ایک پیسہ نہیں تھا, کیا کیا ہوگا؟ چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں. سوچو 70 لوگوں کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں, گھر میں کوئی پیسہ نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کچھ نہیں. تھوڑی سی دوائیاں آئی, بابا نے ایک ایک گولی کے چار چار حصے کر کے ایک ایک کو کھلا دیا اور اوپر سے چھاچ پلا دی, سب کے لوز موشن ٹھیک ہو گئے. یہ تھی بابا کی تھی بات. جب یہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی تھی تو سی بابا اپنی شکتیوں کا پریوگ کرتے تھے, اوپر سے فارمولا بھیجتے تھے. آپ سب کو ان باتوں کا شاید نہ پتا ہو کہ یہ بنا کے کھلا دو, سب بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی. یہ سلسلہ بابا کے اویت ہونے کے بعد بھی چلتا رہا تھا کہ بہتوں کی دوائی وطن سے بابا بھیجا کرتے تھے اور اس سے بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا. ایک بل ایک بھروسے, کہیں سے پیسہ آنے کی کوئی امید نہیں, پھر بھی نشچنت تھا. آج بھوجن کھا لیا تو کل کہاں سے آئے گا یہ پتا نہیں. سوچو کتنی بڑی پریکھا تھی وہ. بابا نے سب کو اگنی پریکھا لے کر تپا دیا. سی بابا بیک بون تھا, وہ چتر چھایا تھا, لیکن پریکھا بھی چھوٹی نہیں تھی برہما بابا کی. لوگ ہنسی مزاق کر سکتے تھے کہ دیکھا چلا دیا یج, خالی ہو گئے کنویں سر. سب یہ پرسد تھے, سب کنویں خالی ہو جائیں گے برہما کماریوں کے. تو بابا نے بہت ہی ہمت ساہس اور بابا پر بھروسے کے دوارا اس سمے کو پار کیا. تینوں چیزیں منوش کو چاہیے, بہت ہمت, بابا میں بہت وشواس, بہت بھروسہ, ایک بل ایک بھروسہ, سمپورن نشچے, بہت ہمت. ڈھیلے ہو رہے ہیں سب. سوچو آپ اگلی بات, سوچو بابا کے پاس آ رہے ہیں ایک ایک. بابا ہم جانا چاہتے ہیں, جاؤ بچے. کل دوسرا آتا ہے, بابا میں جانا چاہتا ہوں, پریوار والے بلا رہے ہیں, جاؤ بچے. مانسک استھتی کا وشلیشن کرو, روز جا رہے ہیں جانے والے, اور بابا اچھل اڈول بھی بابا کو رہنا ہے, سب کی استھتی کو بھی سنبھالنا ہے. کتنی بڑی آنترک شکتیوں کی ضرورت رہی ہوگی, اور اس کے لیے بابا نے کتنی شریش سادھنائیں کی ہوں گی. تو لمبے کال کی سادھناؤں کی ضرورت ہے. جس کا یوگ کا چارٹ روز کم سے کم کتنا ہو, کتنا ہو, 8 تو مرلیوں میں ہے کیول. پریکٹیکل بات بتاؤ, کم سے کم 4 گھنٹے روز یوگ ہو تو ایشوری شکتیاں آتما میں بھریں, انر پاور بڑھے بہت زیادہ, اور تب اچل رول استھتی آئے. کوئی سوچے میرے پاس یوگ نہ ہو اور میں بابا کی کچھ باتوں کو یاد کر کے بے فکر بادشاہ بن جاؤں, یہ سمبھو نہیں ہے. اس لیے آپ میں سے جس کو بے فکر بادشاہ بننا ہے اسے 4 گھنٹے روز یوگ کرنا ہی پڑے گا. اس بھٹی سے آپ بھن بھن طریقے سیکھ کر جانا. 4 گھنٹے بیٹھنے کی بات نہیں, چاہے آپ 1 گھنٹہ بھی نہ بیٹھو, 4 گھنٹہ بدھی یوگ بابا سے لگا ہو. ایک بات اور آپ کے ویژن میں دینا چاہتا ہوں, پھر اس سبجیکٹ کو آگے لیتے ہیں. جس دن وناش کال پرارمبھ ہوگا, ہر منوش کی بہت بڑی پریکھا ہوگی. एक ही लाइन के माध्यम से आप अपनी स्थिति पर नजर डालो, मेरा और मेरे सब जाएंगे, मेरा और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। करें आप इसके लिए अपने को तैयार। आजकल क्या होता है, जरा सी परिस्थिति आई, बच्चे को तकलीफ हुई और माँ रो ही रही, रोती रहती है, योग लगाना भी भूल जाती है। मैं बाबा की एक सुंदर बात आपको याद दिलाता हूँ, नोट कर सकते हैं। समस्या आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है। काम आएगी ये बात आपको। तो अब की स्थिति मनुष्य की ये है कि समस्याएं और बातें आने पर मन विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है और बाबा को भी कहने लगते हैं, तुमसे तो हमारे गुरु ही अच्छे थे, मेरा बच्चा बीमार होता था, गुरु के पास जाती थी, बच्चे को ठीक कर देते थे, तुम तो वो भी नहीं करते। ये माताओं के शब्द में बोल रहा हूँ। और बाबा ने कह दिया है, अब बाबा है तुम्हारा साथी और विनाश काल में हो जाएगा साक्षी। ये नियम नहीं है कि परीक्षाओं के समय टीचर मदद करे, अब मदद कर रहा है। अब अपने को इतना योग्य बना लें कि परीक्षाएं हमें परीक्षा न लगे। सोच लो आप, देख लो आपका जो कुछ है और आपके जो हैं वो सब जाएंगे, भेजेंगे उन्हें या नहीं, क्या विचार है भाइयों का, क्या विचार है? हमारा सब कुछ और हमारे सब जाएंगे या नहीं जाएंगे? या हम बाबा कहेंगे सबको ले जाओ हमारे छोड़ो, पड़ोसियों को पहले ले जाओ बाद में हमारा नंबर लगाना, कहेंगे? सब जाएंगे, मोह की भी परीक्षा होगी और भिन्न रूप से कर्मों के हिसाब किताब देने पड़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरी नोट कर लो, आपके घर में जो बच्चे हैं, छोटे या बड़े, आपके तो वो बच्चे हैं, मान लो एक ही साल का बच्चा है, आपकी दृष्टि में सबकी दृष्टि में वो छोटा सा बच्चा है, पर आत्मा बूढ़ी है या जवान? आत्मा 5000 साल की बूढ़ी है और अपने साथ क्या क्या लिए आई है, सब कर्मों का खेल, वो उसे ही टुकटू करना है, उसमें हम उसे मदद नहीं कर सकते। मेरे पास जब ऐसे फोन आते हैं, अभी माता ही कनाडा की यहाँ बैठी होगी, 3 दिन का बच्चा, 3 दिन का, कैसा होता है, माताओं ने तो बच्चे संभाले है ना, 3 दिन का, उसको इंजेक्शन लगने लगे, इंजेक्शन लगाने वाले को भी कैसा लगेगा, 3 मास का बच्चा डायलिसिस पे, खून बदली हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, वंडरफुल कहानियां आती हैं। 6 मास के बच्चे को कैंसर, एक बच्चे ने जन्म लिया, 7 दिन में पता लगा डायबिटीज है, शुगर। ये सब मुझे बहुत फोन आते हैं, क्या करें, बच्चे ने जन्म लिया, हाथ में छेद है, दिखाई दे रहा है, बाहर से ही छेद है, आर पार छेद है पीछे तक, क्या करें, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं। एक गरीब का बच्चा, उसकी ये कहानी है, डॉक्टर को दिखाया, कहा भाई मैं तो इसको हाथ लगा नहीं सकता, किसी बड़े सर्जन को दिखाओ। अब उनके पास पैसे ही नहीं बड़े सर्जन की फीस देने के लिए भी, कहा इससे तो ये मर ही जाएगा जल्दी, वही ठीक है, कौन संभालेगा इसे। ऐसी परिस्थितियों में अचल अडोल रहना। तो हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नोट कर लो, सब नोट कर ले। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है। हम किसी के भविष्य की भी बहुत चिंता ना करें, सबका भाग्य निश्चित है। ये नहीं मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं। और सच्ची कहानी सुना देता हूँ। कल फोन एक का, माँ फोन कर रही, मेरा बच्चा 12वीं क्लास में, टॉप मोस्ट स्टूडेंट था, 11वीं क्लास से IIT के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। तो वो था बोल रही थी, तो मैं पूछने लगा है नहीं क्या, मैं तो जगह चला गया हो भाई। अब माता जी परेशान है, उसके शब्दों में परेशानी थी, कहा नहीं है, लेकिन अब वो सोया रहता है। अब न उसका खाने को मन करता, न पढ़ने को। डॉक्टर को दिखाया तो कहा इसको डिप्रेशन शुरू हो गया है। सोचो, मैंने उस माता को जो कहा वही आपको कह रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम इसे IIT में इंजीनियर बनाना चाहते हो और वो भी चाहता है, तो ठीक है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब चाहते हैं। लेकिन अब उसके ब्रेन पर अगर प्रेशर पढ़ाई का पड़ेगा तो वो सदा के लिए बेकार हो जाएगा बच्चा, विकसित ब्रेन डैमेज। इसलिए उसको छोड़ दो, अब इलाज करो, एक साल भले ही वेस्ट होने दो उसका, लेकिन पढ़ाई का उस पर दबाव न डालना। अब माता जी परेशान, एक साल वेस्ट होने दो। मैंने कहा या तो एक साल वेस्ट होने दो या बच्चे को वेस्ट कर देना, क्या चाहती हो। मैंने कहा मैं सीधी बात कर रहा हूँ, प्यार वाली नहीं, कि नहीं पढ़ाओ खूब, मेहनत कराओ, रात को जगाओ, चाय पिलाओ। क्योंकि डिप्रेशन जब शुरू होता है कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, एकदम डैमेज हो जाएंगी कई चीजें। आखिर माता जी ने मान लिया, पहले इसका इलाज कराओ, योगदान करो। ये सब पीस ऑफ माइंड चैनल देख के बहुत सारे लोग संपर्क में आते हैं, सेंटर नहीं जाते, घर में ही योग करते हैं, कोई कोई पवित्र भी बन जाते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं जा पाते, कहीं दूर हैं, गांव में हैं। तो अटल अडोल रहने के लिए ये पक्का अभ्यास करना पड़ेगा सालों साल। सबका भाग्य अपना अपना है। बात छोटी सी ये कहने के लिए, लेकिन निश्चिंत रहने के लिए बहुत जबरदस्त बात है। और कहने से काम नहीं चलेगा, अपने बच्चों को सामने देखो और संकल्प करो, ये अपना अपना भाग्य लेकर हमारे घर में जन्मे हैं, इनका अपना अपना पार्ट है। अचल अडोल स्थिति के लिए बहुत अच्छा साक्षी भाव का अभ्यास करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें आप, ये मैं आपको वो लिखा रहा हूँ जो आपको करना है, जो नहीं करना वो नहीं। ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत बड़ी हैं, सबसे नहीं होते, हम उनकी चर्चा भी नहीं करेंगे। साक्षी भाव, केवल दो पॉइंट। साक्षी भाव हमारे अध्यात्म की सबसे ऊंची स्थिति है, सबसे ऊंची। जैसे बाबा, बाबा के शब्द सुने आप साकार मूल्यों के, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। विजन बनाओ, बाप दादा दोनों ऊपर बैठे हैं आकाश के परे, इस संसार के खेल को देख रहे हैं, कहीं आतंकवाद है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं दुख है, चिल्लाहट है, बीमारियां है, अशांति है, झगड़े हैं, फिर भी साक्षी हो रहा है ऊपर। लोग कहते हैं भगवान क्यों देख रहा है ये सब कुछ, क्यों साक्षी हो गया है, क्यों साक्षी है। अब ये तीन बात प्रैक्टिस करनी है, लिख लो। बाबा को पता है और हमें भी पता है, वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी, अपने चार ओर देखना, वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था। दूसरी बात, ये बहुत सुंदर बात है, दो अगली मैंने इसको 74 में सुनी थी, दीदी मनमोहिनी के साथ एक घटना हुई थी, इसी होल की बात है, यहीं बाबा आए थे। पहली बात तो एक बात हो गई, दूसरी बात, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, यानी सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। लानी है प्रैक्टिस में खूब, क्योंकि अनेक मनुष्यों का मन इस बात से अशांत रहता है, इसने मुझसे ये किया, इसने मुझसे ये किया, बहुत है ये बातें। सबका अपना अपना पार्ट है, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। और तीसरी बात, सबसे बुरी लगती है ये मुझे, आपको भी लगेगी, सबसे भाव की बात, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ये चार पांच बातें ड्रामा की हो गई, इनको प्रैक्टिस में लाना है। पसंद है, लाएंगे प्रैक्टिस में या कागजों पे? लंबी काल की प्रैक्टिस चाहिए, एक दिन में नहीं। एक्सीडेंट हो गया, हम कहें यही सत्य है, जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है, और ये भी कह दें यही होना चाहिए, बड़ा खतरनाक लगेगा, लोग लड़ाई करने आ जाएंगे अगर ऐसा कह दिया तो। लेकिन ये भगवान वाच है, कहने की बात नहीं, अंदर ये फीलिंग ऐसी सुंदर उतर जाए हमारे अंतर मन में, कि हमें संसार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके चलना है। लिख लो, स्वीकार करना, अनेक चीजें जीवन में स्वीकार करनी पड़ती हैं। मैं एक माता की बहुत सुंदर स्थिति आपको सुनाना चाहता हूँ, तिनसुकिया आसाम वहां गए तो एक युगल थोड़े से बुजुर्ग हमें अपनी दुकान में ले गए। दुकान बहुत बड़ी थी, इस होल की आधी, आधी से भी ज्यादा। मैंने पूछा, बोलो कोई बात है? कहा एक समस्या मेरे पास है, माता जी बोल रही है 50 साल की होगी। कहा मैं जब भोजन करती हूँ मेरे दोनों बेटे मुझे बहुत याद आते हैं। मैंने कहा बाहर रहते हैं क्या? कहा नहीं। क्या हुआ होगा? 1 साल पहले दोनों एक साथ एक्सीडेंट में मर गए थे। कहा ये दुकान, ये सामने सड़क जा रही, 3 फ्रेंड, 2 ये 1 और, तीनों रात को कार लेके चले 9 बजे, बिल्कुल सामने से। और 5 मिनट में समाचार हमें आया कि कार का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु तीनों की, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इस माता ने अपने को इतना सुंदर ढंग से संभाला है कि उसकी स्थिति देखने लायक थी। कहा बस इतना ही होता है, जब भोजन खाती हूँ तो उनकी याद आती है, होता है कि माँ है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सूक्ष्म में उनका आह्वान करके उन्हें भोजन खिला दिया करो तो वो तृप्त होंगे। पर फिर और विधि भी हमने उन्हें कही, उन्होंने भोग तो बाबा को लगवाया था, लेकिन ऐसे में आत्माएं भटक जाती हैं, उनको पुनर्जन्म के लिए कुछ योग अभ्यास की जरूरत होती है। ऐसा अनेक जगह जहाँ तहाँ होगा, विनाशवाना मैंने कहा, और दूसरे शब्द बाबा के, ये धरती देवताओं के लिए खाली हो जाएगी, होगी या नहीं खाली, ये गंदगी तो यहाँ नहीं रहेगी। हंसी की बात, बाबा कितना बुद्धिमान है तो सब ड्रामा में, पर शिव बाबा की बुद्धिमानी देखो आप, कि पाप आत्माओं के शरीरों को भी यूज कर लेता है, किसमें खाद बना देता है, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, हमारे लिए। जो मुरली में कहा बाबा ने कल, कि सतयुग में ये गंदी खाद नहीं डाली जाती भोजन के फसलों के लिए, सबके शरीरों की खाद बन जाएगी और धरती अति उपजाऊ हो जाएगी, अभी उपजाऊ रही नहीं है। तो सभी अपने को बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए, अब मैं उस बात पर आ जाऊं, मेरे को तेरे में बदलने की लंबी साधना करें, लंबी, एक दो दिन की साधना नहीं, इसमें पूरा जीवन निकल जाता है। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, सब कुछ में क्या क्या, 8 चीजें गिन लो। ये सुंदर साधना है, मैंने आपको कहा तन मन धन और जन, ऐसे लिखो, तन मन धन जन, जन्माना सब मनो संबंधी, और बोलो क्या क्या, एक और चीज पहले, कर्म और कर्मों का फल, कर्मों को भी समर्पित, कर्मों के फल को भी समर्पित। एक और चीज, मन के बोझ और टेंशन भी समर्पित, और मैंपन को समर्पित। काम करेंगे आप इस पे, हमारे मन से आवाज निकलती रहे, बाबा मेरा ये परिवार तुम्हारा है, मेरी ये धन संपत्ति तुम्हारी है, कह सकते हैं भाई लोग या नहीं, कमाया मैंने और कर दूं बाबा जी, मेहनत तो मैंने रात दिन की थी, बाबा को कह तो सब तुम्हारा, लेकिन बाबा क्या कहेगा ऊपर से, बाबा भी यही कहेगा, मेरा सब कुछ तेरा। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है सबको, मैंने सेंटर से सीखी, दो छोटी बहनें रहती वहाँ, उनसे मैंने सीखी, सच्ची बात बता देता हूँ, वो क्या करती हैं, जो कुछ घर में आता है सब्जी भी, थैला पहले बाबा के आगे रख देती हैं। जब हम उनके सेंटर में, एक छोटा सा सेंटर, तो बाबा के आगे कुछ चीजें रखी थी, मैंने पूछा क्यों रखी है, कहा ये सब भाई बहने लाए हैं आज, जो आया सब बाबा के आगे रख दिया, कहा बाद में हम यूज करेंगे इन्हें। रसिया में तो उन्होंने नियम ही बनाया हुआ है, आप सबको पता हो ना पता हो, जो भी भाई बहने स्टूडेंट्स कुछ भी यज्ञ में देंगे, वो बाबा के कमरे में ही रखेंगे, चाहे सोने की अंगूठी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, बाबा के कमरे में ही रख के जाएंगे, उन्होंने ये भंडारी वो कर दी है बाबा का कमरा। तो आप भी ये छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैलरी आई पहले बाबा के आगे रखो, स्थूल में करो, ये तुमको अर्पित, अब तुम्हारी ओर से हमारी पालना होगी। कपड़े लाए बाबा के आगे रख दो, हैं? डायरेक्ट बैंक में आते हैं ना, कोई बात नहीं, उसको ही समर्पित कर दो, आजकल सैलरी बैंक में आती है, ठीक कहा, समर्पित कर दो वन सेल्फ को, स्थूल चीजें लाए कुछ बाबा के आगे रखो तुमको अर्पित। ये आदत है, आदत बनाने के लिए कि मैंपन पूरी तरह निकल जाए। कर्म मेरा, कर्मों को कैसे अर्पित करेंगे, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। और सबसे सूक्ष्म है कर्मों का परिणाम अर्पित करना। कर्मों के परिणाम में कभी क्या होगा, आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत आपने मेहनत करके बहुत मेहनत की लेकिन आपको लॉस हो गया, डेफिनेटली मनुष्य को चिंता होगी, बहुत संकल्प चलेंगे, निराशा आएगी, लेकिन इस कर्म के परिणाम को भी अर्पित कर दो बाबा पर। सुख आया वो भी अर्पित, दुख आया वो भी अर्पित, महिमा हुई वो भी अर्पित, ग्लानी हुई वो भी अर्पित। सूक्ष्म बात है, लाभ हानि सुख दुख जय पराजय सब तेरी। मैंने अपने जीवन में शुरू में ये प्रैक्टिस बहुत की थी, जब हमने क्लास शुरू की, हमें क्लास दी गई 77 में दी गई थी सबसे पहले, तो महिमा कम और ग्लानी ज्यादा सुननी पड़ती थी। शुरू क्लास थी ना तो लोग कमेंट्स करते थे, भाइयों को क्लास दी भी नहीं जाती थी, केवल बहनों का ही अधिकार था वो, लेकिन मधुबन में सेवाएं बजने लगी तो हमें भी दी गई। तो मैंने इसके लिए गीता पढ़ी थी बहुत अच्छी तरह, उस अनुसार ये बात तुरंत मेरी बुद्धि में आई कि कर्म भी बाबा के हैं तो उसका फल भी बाबा को जाने दो। और उसका सूक्ष्म फल कि कोई भी कुछ कहे कि तुमने क्लास ऐसी कराई, ये कराया वो कराया, सब ऊपर। तो महिमा भी हुई वो भी ऊपर, तो इससे स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। न महिमा स्वीकार करने से अहम आएगा और न ग्लानी स्वीकार करने से कष्ट होगा। ये सूक्ष्म प्रैक्टिस बहुत मदद करती है। अभी मैं तो प्रैक्टिकल एक चीज करता हूँ, अपना अनुभव सुना देता हूँ। जस्ट ये कोई बड़ी बात नहीं है, बात छोटी सी है। सेंटरों में हम जाते हैं, बत्तियाँ होती हैं, बड़ा आनंद का माहौल होता है। लास्ट में बहनें जहाँ तहाँ सम्मान करती हैं, बैठाती हैं, ताज पहनाएंगे, ये वो आप जानते हैं ना। तो मैं साथ साथ करता हूँ कि ताज पहनाया तो बाबा तुम पहन लो। मैं देखता हूँ ब्रह्मा बाबा के सिर पे ताज आ गया, माला डाली बाबा के गले में आ गई, ये तुम्हारा सम्मान हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर से आया हमारे पास, जो कुछ हम सुना रहे हैं दे रहे, हमारा तो कुछ था भी नहीं। तो इससे बहुत आनंद रहता है जीवन में, किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं आता। समर्पण भाव पर बहुत ध्यान देंगे आप सभी, क्योंकि मैंपन अपनी जड़े बहुत गहरी जमा चुका है। मैंपन अगर मनुष्य अपनी जांच करे गहराई से तो उसे पता चलेगा कि उसके पास बहुत तरह का मैंपन होता है। मैं घर का बड़ा हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी राय से काम किया जाए, मैं ही राइट हूँ, मेरी बात स्वीकार की जाए, मैंने ये काम किया, मैं अनुभवी हूँ, मैं बड़ा हूँ, बहुत सारे मैंपन की शाखाएं हैं और गहरी जड़े हैं। उसको पहचानना, कल का वरदान आप याद करें, यदि महसूसता की शक्ति से। सिंपल बात यह थी कि अपनी कमियों को भी महसूस करो और अपनी मानताओं को भी। मानताओं की महसूसता कमियों को नष्ट करेगी। कई लोग केवल अपनी कमियों को महसूस करते हैं तो निराश होते हैं, कई लोग केवल मानताओं को देखते हैं तो दूसरा रूप हो जाता है। समर्पण भाव, निमित्त भाव। और याद रखेंगे बाबा के दो महावाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, एक स्वमान का है, कल स्वमान पे क्लास होगी, लेकिन मैं वो महावाक्य सुनाता हूँ आपको, कल दूसरी चर्चा करेंगे। दो महावाक्य हैं बाबा के, कोई रात दिन चाहे कितनी भी सेवा करे, लेकिन यदि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी नहीं है तो याद है किसी को, तो केवल 5% ही जमा होता है, केवल 5%। 5% माना जीरो हो गया ना। विचार करेंगे सब इस पर। निमित्त भाव बहुत बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ बाबा की शक्तियों से हो रहा है। यदि उसकी दृष्टि हम पर न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बेफिक्र बात समझने की, जिसकी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं भी बहुत करता हूँ फिर भी कहीं कहीं बेफिक्र नहीं रहते, थोड़ी फिक्र हो जाती है, पर वो है फिक्र बाबा को देखकर ठकुर ले लो। फिक्र देना ये तो हो गया समर्पण भाव, लेकिन लेना भी है क्या, ठकुर नशा। और क्या नशा लेंगे, कौन मुझे साथ ले रहा है। रोज आप अपने को रिमाइंड कराएंगे, कौन मेरा साथी है। वो मेरा साथी है जिसका साथ होने पर कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, जिसका साथ होने पर और किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, भरेंगे इसको अपने अंदर। इसका विस्तार आप स्वयं करें। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत और सुंदर बात पर। हमारे जीवन में रोज जब हम सवेरे उठते हैं, मैं इस बात पर बहुत क्लासेस कराता हूँ, आपने सुनी भी होंगी, लेकिन ये बात बहुत सुनने की है, बार बार सुनने की है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमें बहुत कुछ सिखाती है। रोज सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारे पहले 10 मिनट हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। आप इस बात को जान लें बहुत अच्छी तरह, क्योंकि सवेरे 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी में कहेंगे अंतर्मन, जगा रहता है। और सवेरे के टाइम में यदि हम अपने अंतर मन में कुछ सुंदर विचार भर दें तो वही होता है। समझ ले इस बात को सभी बहुत अच्छी तरह। सवेरे 10 मिनट, और उसमें भी पहला संकल्प, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे कल से, पहला संकल्प हमारे भाग्य का निर्माता है। आदत डाल दो आप, उससे ही मुझे क्या सोचना है। मनुष्य कुछ तो सोचेगा ही उससे ही, लेकिन पहले संकल्प को आप अपने कंट्रोल में कर लो कि मुझे यही सोचना है, और देखो इस 10 मिनट का चमत्कार। चार्ज करना है आपको रोज 10 मिनट स्वयं को, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर जाना है जहाँ माया से भी युद्ध है और समस्याओं से भी युद्ध है, डबल युद्ध होता है। ऐसे में रोज सवेरे 10 मिनट खुद को अच्छे संकल्पों से चार्ज करना होगा। अब उठते ही क्या सोचेंगे, अगर नींद खुल रही है और आपने सोच लिया योग तो लगता नहीं है, उठ के क्या करूंगी, तो क्या होगा, क्या होगा। मैं वो भी बात बता रहा हूँ आपको जो मनुष्य गलती करता है, अनजाने में गलती होती है, उसे पता नहीं कि उसने कुछ गलती की है, योग तो लगता नहीं, उठकर क्या करेंगे? तो क्या होगा? योग लगेगा नहीं। और आप उठ ही रहे हैं, अभी आधी नींद में हैं, और आप संकल्प कर दो मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, तो योगी बन जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे इन बातों को। उससे ही आपने संकल्प कर दिया मेरा भाग्य तो अच्छा नहीं है, तो भाग्य बिगड़ता जाएगा। और उठते ही आप खुशी में डांस कर दो जरा, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, 3 दिन में आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ नजर आएगा। 5-5 बार कर दो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा की ओर देखो, धन्यवाद दो उसको, आपने मेरे भाग्य का सितारा चमकाया है, आप मेरे लिए बहुत विशाल भाग्य लेकर आए हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हो, इस विधि को आप अपना लें, उससे ही बाबा को शुक्रिया करें। चमत्कार देखना इसका, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत अच्छी बुद्धि दी, खाने पीने को सब कुछ दिया, भरपूर किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कर सकते हैं या नहीं? या कहेंगे बाबा आप तो मिले पर पैसा तो नहीं है, आपने हमें गरीब क्यों बनाया? पैसा भी होता तो कितनी सेवा करते हम आपकी, पर जिनके पास पैसा है वो सेवा ही नहीं करते, पर गरीब यही सोचता है। अगर आपने पहले 10 मिनट में अपनी गरीबी का बखान कर दिया तो आपने गरीबी को निमंत्रण दे दिया। समझ लें इस बात को, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। सवेरे उठते ही रोज 7 बार याद करने लगो, 7 दिन तक करो बस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो चमत्कार, इसके अनुभव रोज मेरे पास आते हैं, मैं बहुत सिखाता हूँ विद्यार्थियों को, बहुत ज्यादा जिनको कठिनाई होती है, याद नहीं होता, बहुत पढ़ते हैं, बुद्धि में ठहरता नहीं है, उनसे मैं ये प्रैक्टिस बहुत कराता हूँ। ऐसे भी बहुत लोगों के फोन आते हैं, आज भी एक का रहा था कि मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य है, माता जी कह रही जब से मैंने जन्म लिया मैं कुछ नहीं कर पाई, जो करूँ वही आधे में छूटता है, असफल, जैसे श्राप दे दिया हो किसी ने। क्यों श्राप मिलता है मनुष्य को? एक और गुह्य बात आपके सामने रख देता हूँ, तो किससे अलग है। कोई व्यक्ति बहुत सफल हो रहा है जीवन में, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हमें उसके बारे में जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो हम ईर्ष्या उस मनुष्य से नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? उसकी सफलता से, उसकी प्रोग्रेस से। तो वो सफलता हमारे पास कभी नहीं आएगी। और अगर हम वाह वाह करेंगे उसको, वाह तुम कितने भाग्यवान हो, बहुत उन्नति की तुमने, तुम भाग्य लेकर जन्मे हो, यही सफलता हमारे पास भी आ जाएगी। तो जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर बहुत परेशान रहे हैं, उन्हें असफल होने का जैसे श्राप मिल गया है, ऑटोमेटिक है ये, कर्मों की गति है ये। तो सवेरे उठकर आज ही आप प्लान बना लेना, सवेरे उठकर मुझे क्या क्या सोचना है। सुंदर विचार, मैं विजयी रतन हूँ, मैं माया जीत हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुंदर विचार है, ये विचार करने में तो हमारा खर्च नहीं होता ना कुछ, हमें कल नहीं जाएंगे। जब भगवान ने कह दिया तुम विजयी रतन हो तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं। सुंदर विचार करो। मैं राजस्थान की बहनों को एक बात सिखाया करता हूँ कि जब पहले किसी को भी राजस्थान में भेजा जाता था ना, अभी तो सेवाएं बढ़ गई, तो पहले से ही बहन जी को बता दिया जाता था यहाँ सेवा नहीं बढ़ती, भूमि बड़ी कठोर है, रेगिस्तान है, सेवा नहीं बढ़ती। तो बहन जी एक संकल्प लेकर सेंटर में गई है, क्या यहाँ सेवा नहीं बढ़ती तो क्या होगा, बढ़ेगी क्या? मैं बहनों को कहता हूँ नहीं, संकल्प के साथ नहीं, संकल्प करो मैं इस देवी हूँ, जहाँ मैं जाऊंगी रेगिस्तान में भी फूल खिलेंगे तब सेवा बढ़ती है। मैं इस देवी हूँ, बहुत सारी देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर यहाँ आएंगी, हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम सफल हो रहे हैं या नहीं, हमारा जीवन विघ्नों में चल रहा है या निर्विघ्न, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं या कदम कदम पर बाधाएं हैं, हमारे पास धन सह जा रहा है या धन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, अब ये आप सोच लें। इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे संकल्प। और माताएं ये भी सुन लें, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिस घर में प्रेम और खुशी का माहौल है वहाँ लक्ष्मी सदैव ही वास करती है। माताओं का काम है अपने घर के माहौल को खुशियों से भरना। पसंद है? बनेंगे बेगम बेफिक्र बादशाह? बाबा पहले बेगमपुर के बादशाह कहता था, बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता नहीं, संकल्प कर दो, मेरे जीवन की डोर तुम्हारे हवाले, मेरे नहीं मेरे परिवार की सारी डोर तुम्हारे हवाले, नाव बना दो उसमें बैठा दो परिवार को और देखो पतवार किसके हाथ में है, बाबा नाव चला रहा है, सागर चाहे कितना भी गहरा है, लहरें चाहे कितनी भी भयानक हैं, तूफान चाहे बिल्कुल अनंत गति से चल रहा है, लेकिन हमारी मैया का खिवैया पीछे वाले है या ढीला ढीला, ये नशे में लाने की बात है। इससे बेफिक्र बादशाह बनते जाएंगे। मैंने आपको सारी कई चीजें कही, हर चीज को स्वीकार करने की आदत डालो, क्योंकि आज जो हमारे पास है वो अब से 10 साल बाद नहीं होगा, 20 साल बाद ये दुनिया पे कुछ कुछ लोग ही दिखाई देंगे। बाबा साकार में कहते थे 25-25 कोस पर दीपक जलेगा, कोस तो जानते हैं ना माते पुरानी, 50-50, 60-60 किलोमीटर पर दीपक जलेगा, दुनिया खाली हो जाएगी। तो हम तैयार करें अपने को जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने जा रहा है उसे स्वीकार करें। कौन मेरा साथी है, भोजन तो वो खिलाएगा ही, वायदा कर लिया है, तुम्हारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी, इच्छाएं नहीं, भगवानों वाच है। अब एक सुंदर बात के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा बहन जी, कविता बहन बहुत हो गया मान, बादल ज्यादा बरस जाते हैं मुश्किलात होती है, कल बारिश हो गई ना, ऊपर भी हुई, हम तो नीचे थे, नीचे बहुत हुई, वहाँ तो इतना पानी गिरा, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया माहौल। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत गहरी बात है, इस पे आप सब चिंतन करना। और जैसा मैंने कहा, सवेरे उठकर हम क्या सोचेंगे, इसके लिए 10-20 पॉइंट लिख लेना अपने पास, रात को उन्हें निश्चित करके सो, सवेरे उठते बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और उसे इस चीज के लिए शुक्रिया देना है। बच्चों को भी सिखा दो, चाहे बच्चे आपके ज्ञान में है या नहीं, भगवान को धन्यवाद दो, तुमने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी, बुद्धि का विकास होने लगेगा। और अगर आप बच्चों को बार बार कहते हैं और बच्चे भी सोचते हैं मेरी बुद्धि बहुत कम है, मैं तो थर्ड क्लास ही आती है, 50% से ज्यादा आएंगे ही नहीं, तो बुद्धि डल होती जाएगी। सवेरे उठते ही अपने बच्चों को सिखा दे वो ऐसा करे, हे प्रभु तुमने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना उनका जीवन कैसा बनता है। तो सवेरे उठकर अच्छे से अच्छे विचार करेंगे, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। सुन लिया सभी ने? इसलिए एक संकल्प क्रिएट कर लो अभी से। क्रिएट करना माना रच लो, एक संकल्प कर लो अपने मन में, मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, मेरा गुड टाइम आ गया है, मेरा आने वाला समय बहुत सुंदर होगा, मेरे बच्चे बहुत चरित्रवान होंगे, हमारे पास धन धान्य भरपूर रहेगा, हम बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित होंगे। तो आपके ये संकल्प वैसा ही क्रिएट करेंगे। एक माता की कहानी और याद आ गई मुझे इसमें। एक माता छोटी बहुत दुखी, क्यों? मेरे दो छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, 5-6 साल के बच्चे। कहा मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैंने पूछा क्यों? कहा मुझे संकल्प आता है इनका कोई अपहरण न कर ले। मैंने कहा तुमको किसी ज्योतिषी ने बता दिया क्या? नहीं बताया तो नहीं, अखबार में एक दिन पढ़ा था किसी के बच्चे का अपहरण हो गया। मैंने कहा बस देखो उसका गुड टाइम था वो। मैंने उसे कहा यही सिखाया, जो संकल्प तुम बार बार करती हो उसका तुम निर्माण करती हो। अगर तुम ये संकल्प बार बार करती हो तो तुम्हारे बच्चों का अपहरण हो जाएगा, ये सत्य है। तो क्या करूं? मैंने कहा तुम ये करो, मेरे बच्चों के साथ तो सेवाबा है, छत्र छाया है उसकी, ये सदा सुरक्षित रहेंगे। बस ये सुनते ही जैसे उसकी वो चेतना जग गई, हाँ ये बात ठीक है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं आज तक। उसने तो कहा मेरी दीदी ने कभी नहीं सिखाया मुझे ये। मैंने कहा चलो दीदी ने नहीं सिखाया, दादा ने तो सिखाया, अब तुम सीख लो। उस दिन से उसका शिष्यांत हो गया। पक्का कर दो, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका हम निर्माण करेंगे। एक चीज के लिए और सावधान कर दो, सवेरे उठते ही हम खाट से नीचे तो उतरते हैं ना, जिनको घुटने दर्द है घुटने दर्द होते हाय बहुत घुटने दर्द, सवेरे उठते कर दिया तो घुटने दर्द बढ़ जाएंगे। अब ये बड़ी नेचुरल सी चीज है, इसको चेंज करना पड़ेगा। बड़ा नेचुरल है ना, खाट से पैर नीचे उतारा वो तो दुखेगा ही, लेकिन बाबा को थैंक्स देना, तुमने मुझे बहुत अच्छे घुटने दिए, धन्यवाद, घुटने ठीक होने लगेंगे। ओम शांति। बाकी कल मिलेंगे स्वान पे डी।
Thank you.